कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, कृपया प्रमाण सहित बताइए। तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है, वह परमेश्वर कौन है?
गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे, ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आती, और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की परिवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है और फिर कहता है कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 2रे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में और 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें तो भी गीता ज्ञान दाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है, जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और उसकी शरण में जाने से तेरा कंप्लीट पूर्ण मोक्ष होगा। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, इसकी जानकारी कहां है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई प्राण अपान इसकी अपान की क्रिया को, जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, कोई बात हुई ना ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, सब अपनी अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सचिदानंद घन ब्रह्म ने, सचिदानंद घन ब्रह्म ने यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है अपनी अमृतवाणी में बोलकर, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो सचिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको डंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, ये श्री मद भगवत गीता का अनुवादकर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी पर ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है, और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का, अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले भाई, बेड अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं, उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया। अरे ननाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो, है तेरा गजब। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज, और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं पूरे विश्व के, मानो आपको पोशाक अलग से मिली है, ये शरीर क्या है, एक चोगा है, चोला है, ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है, संतों ने इसको चोला कहा है, वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो, क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला, क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा, और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है, बाकी हमारा काम तो यही है। संसारिक कर्तव्य अपने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को, तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हम हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 1,84,00,000 प्रकार की बुनियादी योनियां एक और बना देता उन के जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस नारी मिलती है, स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं मजदूरी करते हैं उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं, और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को, वो तो दुश्मन होता है उनका जो सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है, 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर, जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं, 4वें अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, अनुवाद करता हूं। ये देखिएगा 4वें अध्याय का 32वां श्लोक, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा, एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, आप एजुकेटेड हैं पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए, नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहां कोई शिक्षा नहीं थी और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है, जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने, ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं, परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विष को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को, अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन हर कैसा है, ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सत्र की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुण्यात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से, उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीतर से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी, और ना कोई TV चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे ये यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सदग्रंथ जिनको आप सिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है, और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए श्रोधारी हमारे के लिए, हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं श्रीमद् भगवद् गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था, अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था, तो अब हम अमृत खाएंगे विष त्याग देंगे जब हमें पहचान हो जाएगी। तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है, कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और उन सबको तू कर्म जान, ये गलत है, शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है यहां की है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुम्बड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व उपरावे में सच्चाई छ नीना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाण की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाए, इतनी देर में फिरा ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर की तरह चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मण, यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है, ये ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहां पर, ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है। इसलिए ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म अपने आत्माओं, ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश, ईश माने क्या होता है, स्वामी मालिक, परमात्मा ईश कहो ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट, जैसे एक दादा एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा नेक्स्ट ग्रैंडफादर, तो ब्रह्म फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पारब्रह्म। पारब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में तीन पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपन आत्माओं इतने इंटेलिजेंट मानव बना है आज, इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां, इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे दत्त मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम, अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी, जो परमात्मा काम किया करता परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर ली वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा वो टेलीविजन और वो गाने, उन्हें फोड़ने दिल कराए न फूकजों की तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है, असली सुख भगवान से मिलेगा जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, तीन भगवान हैं, तीन ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहां पर है। इसमें क्या कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सरे सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहां पर किया उन्होंने। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो, इन्होंने सर्वाने नाशवान, अक्षरवाने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर्पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता, अक्षर पुरुष और सर्पुरुष ये, और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सर्पुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर, अब तीसरा कौन है वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दो पुरुष हैं, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो, इस दो प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर्पुरुष सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते है। ये लोग तरम आवि से विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म। तीसरे नंबर का उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है, और अध शाखम यहां इन्होंने अध का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अध माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अध्यय दो बार है, अध्यय अध्यय ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने और उर्धोम उर्धुम भी है, यहां देखो इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अध्यय माने नीचे है, अध्यय माने नीचे, अध्यय माने नीचे, और उर्धव माने ऊपर, उर्धम माने ऊपर। अब यहां देखो हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ये अध शाखम, यह ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदित। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अध शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ओए होए, वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको, पहले ये है ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम अधःशाखम ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार निरंजन कहो सरपुरुष कहो और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक जुलाहे रूप में बनारस में देखा, जब कहा था दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगदो, तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुर तुम हंस और गरीब दास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न दू जान तुम ही साहेब हो तुम परमात्मा हो सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुर तुम हंस और गरीब दास जी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था चित्रार्थ किया था उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की, तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुर तुम हंस गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहां बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को, अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है सरपुरुष वाकी डारे तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये ऐसे लेंगे, ये है जड़ जो मूल है ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष ये जो बाहर दिखाई देता ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं और ये पात रूप संसार है, ये पात रूप हम हैं आगे। और मूल कौन है, ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा, ये देखिएगा ये कौन है, ये कबीर साहेब है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब परम अक्षर ब्रह्म, ये सारे सारे संसार के आधार हैं, ये सबके धारण पोषण करने वाले हैं, जैसे वृक्ष की जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया, इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, ये देखिए ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक, इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये, इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना, ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको, और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता कि जो इन सभी छंदों को सभी विभागों को तत्व से जानता है। सर्पुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूप रूप कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर्पुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। तो यहां इस श्रीमद भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी यहां देखिया गया। 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप आय है पुण्यात्मा। ये सदग्रंथ है, यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी, इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी। इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं, ये कोड वर्ड है तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये दिखाता हूं, ये मार्कंडेय पुराण जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहां मार्कंडेय जी बोलते आ रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले मुने। अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ लेंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सत्गुण विष्णु तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में हमें ये सुविधा है इसको समझने में, भाग एक और ये कहां से प्रकाशित है, श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से, इसके यहां आइएगा। ये तीसरा स्कंद है, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते, तीसरे स्कंद में आ गया प्रश्न नंबर 11 पे और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे, सातवां यहां समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी मां दुर्गा से, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये तो हिंदी है, संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, शंकर भगवान कहते तमोगुण है, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया, सुवीत क्यों सतोगुण सत्व गुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण सिद्धि। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद भगवद गीता को, गुणात्मा इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा, इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहां फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं, श्राद्ध निकाल दो तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में दो दो तीन तीन बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में एक दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को, अब हम सद ग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा आप, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को, ऊपर को जड़ दो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को अध शाखम, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, अध माने नीचे ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है, कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहां कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं, किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहां बांध दे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में, इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट, यहां स्पष्ट कर रहा है कि यहां विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा, तेरे और यहां मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है वैसा यहां विचार काल में यानी गीता जी के डिस्कशन में इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत, इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है, इससे इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले यानी परमात्मा का जो ऊपर का लोक है सतलोक अलकलोक अगमलोक और अकह लोक जिसे नामी लोक कहते वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है, वो सुदृढ़ मूलम सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहां भगवान रहता है वो अविनाशी है, यहां उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर, ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र, उस ज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के उसके पश्चात, ये देखिए 15वें अध्याय का 4वां श्लोक देखिएगा, 15वें अध्याय का गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें तो अड़ंगा डांड का मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान को हटाकर काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है, राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत आपका, जचियो कद्दे फिर। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
हाँ सर साहेब भगत जी,
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
मेरा नाम भक्त दुष्यंत दास है।
सर कहाँ से आए आप?
मैं ग्राम रानी तराई, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आया हूँ।
सर क्या काम करते हैं आप?
सर मैं अभी पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता में ट्रेनिंग किया हूँ और अभी अपने गांव के पास ये उसमें प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करता हूँ।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
मैं परम सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले कबीरपंथी दामाखेड़ा से भक्ति लिया था। वहाँ का जो महंत है, मैंने जो गांव में कड़ियार बना के रखते हैं, उनसे मैं गुरु दीक्षा लिया था। तो वहाँ मुझे जो मंत्र दिए थे 5 नाम, तो 5 नाम का जो मंत्र दिए थे, लेकिन उसका जो है कैसे किस विधि से और किस नियम से कैसे उसका जाप करना है, पालन करना है, इसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं दिया था, जिसके कारण से मैं जो है मैंने थोड़ा सोच में था कि वहाँ कबीरपंथी में ये था कि एक मूल संध्या पाठ है जो शाम के समय आरती करते थे और उसमें प्रथम बार में बोलते हैं कि श्वास श्वास पे नाम ले, बीता श्वास मत खोए, न जाने यह श्वास का आवागमन न होए। तो मैं ये सोचता था कि ऐसा कोई जो मंत्र दिए हैं इसमें कोई विधि नहीं बताए हैं कि इसको श्वास श्वास पे नाम को सुमिरन कैसे करना है, और ये बताते हैं कि जो गुरु जी बताते हैं कि सतनाम सार नाम और सार शब्द इसके बिना जो है मुक्ति हो ही नहीं सकती है, और आप ये सब चीज का जब नियम में मर्यादा में रह के पालन करोगे तभी मुक्ति हो पाएगा, और हमें जो मंत्र दिया है उसमें ना तो कोई नियम है ना कोई मर्यादा है, ना ये कोई बताया नहीं कि ये सतनाम है कि सार नाम है या सार शब्द है और इसका सुमरण कैसे करना है। तो मैं जब गुरु जी का जो है सत्संग सुना साधना चैनल में, तो मेरे को लगा कि वास्तविक में जो हमें भक्ति मार्ग बताए हैं ये अधूरा है और तत्व ज्ञान से जो है रहित है। तो मैं गुरु जी के शरण में आया और यहाँ से नाम दीक्षा लिया हूँ।
सर जब आप बता रहे थे दामाखेड़ा से आप नाम उपदेश लेके भक्ति करते थे, तो क्या भक्ति देते थे, क्या मंत्र जाप करने के लिए देते थे वो आपको?
दामाखेड़ा वाले जो है 5 नाम देते थे, आदि नाम, अजर नाम, पताली शब्द, सिंधु नाम, यही नाम, हंस को काम, पकड़ो कुंजी, खोलो कपाट, पांडी चढ़े मुल्की घाट, भरमभूत का बांधो गोला, धर्मदास, अजर मुख बोला, 5 नाम यह प्रमाण, जो हंसा को ले सतलोक समान, ये नाम जो देते थे दामाखेड़ा वाले। तो मैं जो है अपने महंत जी से जाके पूछा हूँ कि महंत जी इसमें जो है बताते हैं कि ओहम सोहम तत्व विचार बंकनाल में किया समारा मन को मार गगन चढ़ जाए मान सरोवर बैठ नहाए, ये मूल संध्या पाठ में जो बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या है? तो वहाँ हमारी जो महंत जी बताए कि भाई ये जो है ओहम है ये सोहम है, तो मैं बोला कि भाई इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी कहते हैं तो ये इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी क्या हुआ? तो फिर बोलते हैं ये इंगला है ये पिंगला है ये सुषमा नाड़ी है, तो मैं बोला कि वही ओहम वही सोहम वही इंगला वही पिंगला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं थोड़ा सा ये हो गया, फिर मैं बोला कि यहाँ दामाखेड़ा पंथी में जो है चौका आरती बनाने का जो प्रथा है कि चौका आरती हर कार्यक्रम में जाए, वो षठी का कार्यक्रम हो चाहे विवाह का कार्यक्रम हो चाहे मन्नी का कार्यक्रम हो, उसमें चौका आरती वगैरह बनवाते थे। तो मैंने बोला कि मूल संध्या पाठ में लिखा है कि घटका चौका कर उजियारा हितकर संपुट कर ले मूला, यह नयनन साहेब को तूला अहंकार अभिमान विडारा घटका चौका कर उजियारा। तो इसमें घटका चौका लिखा है ना कि घर का चौका, और यहाँ तो है घर का चौका करते हैं लेकिन घट में जो अवगुण रूपी जो अंधकार है वो तो जस का तस है, इसके बारे में तो कुछ सही ढंग से ज्ञान मिल नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा बहुत अपने आप में महसूस करने लगा कि मेरे को सही ज्ञान नहीं मिल रहा है और जो भक्ति नहीं मिल रहा है तो मेरा उद्धार कैसा होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा, मैं अपने आप में जो है थोड़ा तड़पने लगा। तो फिर गुरु जी के शरण में आया हूँ।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
मैं परम संत सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के शरण में साधना चैनल में गुरु जी का सत्संग सुना हूँ, और एक दिन मैं अपने फूफा जी के गांव अरमरी कला गया था, तो वहाँ फूफा जी जो है बताया कि एक पाम्पलेट दिया सतगुरु जी का और ज्ञान गंगा की पुस्तक दिया, और बोले कि आप साधना चैनल में 7:55 को जो है कार्यक्रम देता है गुरु जी का, वो आप कार्यक्रम सुनिए। तो मैं सुना और अपने माँ और बाबू जी को भी बताया कि कबीर परमेश्वर का जो सत्संग का कार्यक्रम साधना चैनल में देता है, तो उन लोग भी सुने। तो फिर मेरे माँ बाबू जी बोलते हैं कि 2-4 महीना सुनने के बाद कि हम लोगों को बड़वाला जाना है सत्संग में, गुरु जी से दीक्षा लेना है। तो मैं सोचा कि अब मेरा माँ बाबू जी पढ़ा लिखा भी नहीं है, उतना दूर दिल्ली से आगे हरियाणा में बड़वाला कहाँ पे है, अकेले कैसे जाएंगे, भटक जाएंगे। तो मैं अपने माँ बाबू जी से बोला कि एक काम करता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। तो फिर मैं अपने भगतमती जी के भी बोला हूँ कि हम लोग सब एक साथ बड़वाला जाएंगे और सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेंगे। तो मेरा भगतमती जी जो है अपनी मेरा भाई बहू यानी अपने उसकी देवरानी जी को भी बोली, तो उन लोग भी तैयार हो गए। तो हम लोग सब आए यहाँ और सदगुरु के शरण में आके जो है नाम दीक्षा लिए हैं।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
परम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे प्रथम लाभ तो ये हुआ कि मेरा जो ज्ञान का जो है दरवाजा खुल गया, क्योंकि आज तक मैं जो है अंधेरे में भटक रहा था। दूसरा चीज मैंने अनुभव किया है कि आज तक हम जो भक्ति मार्ग कर रहे थे इससे कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था, जो रूढ़िवादी और रीति रिवाज से जो भक्ति कर रहे थे वही चल रहा था। अभी लेटेस्ट की घटना है, इसी सितंबर की बात है, 4 सितंबर को मेरे को 10-15 दिन पहले जो है मेरा जो दस्त है उसमें जो है ब्लड जा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये क्या है, तो मैं क्योंकि चिकित्सा विभाग से ही जुड़ा हूँ तो पहले ब्लीडिंग बंद करने के लिए जो है दवाई वगैरह लेके दिखा, उसके बावजूद ही ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। तो फिर मैं शहीद हॉस्पिटल है दल्ली राजरा में वहां जाके डॉक्टर तिवारी सर से चेक कराया, तो तिवारी सर ये बताया कि आपको जो है पल्स वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन अंदर से ब्लीडिंग हो रहा है, उस बीमारी का नाम बताया प्रोक्टोस्कोपिक में चेक करने के बाद हिमोराइड का प्रॉब्लम है और ये जो है ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है। तो मैं वहां से फिर वापस आ गया कि तैयारी में 1-2 दिन के बाद आऊंगा फिर ऑपरेशन करवाऊंगा। फिर घर आने के बाद मैं अपने भक्तमती को बताया कि भाई मेरे को ऑपरेशन करवाना है और 1-2 दिन के बाद जाना है। तो भक्तमती बोले कि सदगुरु रामपाल जी महाराज तो बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो आप पहले उसके पास अर्जी लगा लीजिए, क्योंकि जब बड़े बड़े बीमारी ठीक हो सकते हैं आपका छोटा मोटा बीमारी क्यों ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं 6 तारीख के डेट में अर्जी यहाँ लगाया, तो उस डेट में क्या है सत्संग चालू था, तो भगत जी लोग बोले कि अभी तीन दिन तक के सात आठ छह सात आठ को जो है अभी अर्जी नहीं लिखेंगे, गुरुजी मना किया है, उसके बाद आप अर्जी लगा सकते हैं। फिर मैं ये सोचा कि मेरा जो है ब्लीडिंग बढ़ रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग बढ़ जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा, तो मैं ये सोच के जो है ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल चला गया। वहां ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करवाने के बाद जो है दो तीन दिन के बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया। अब वहां से आने के बाद भी हॉस्पिटल में भी और आने के बाद भी मेरा जो है ब्लीडिंग जो है बंद नहीं हो रहा था। फिर मैं परेशान हो गया कि अब कैसा करूं, ऑपरेशन भी करवा लिया उसके बावजूद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है। तो फिर मैं वापस जो है 13 तारीख को फिर अर्जी लगाया गुरुजी के पास कि गुरुजी मैं अब बहुत परेशान हूं, दवाई खाया, दवाई से ठीक नहीं है, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद भी ब्लड जा रहा है। तो फिर भगत जी बताया कि आपका अर्जी स्वीकार कर लिया, 101 नंबर में जो है आपका अर्जी है और आप शाम को 6 बजे इसका जो है समाधान आप पूछ लेना। फिर मैं बाद में फिर फोन लगाया तो बताया गुरु जी कि आपको जो है ज्योति के लिए संकल्प लेना है, गुरु जी का आदेश है। तो मैं गुरु जी के जो जहां हम लोग पूजा करते हैं गुरु जी के ये के सामने, वहां पे गुरु जी का दंडवत प्रणाम किया और संकल्प लिया कि हे बंदी छोड़, आप मेरे सभी दुखों और कष्टों का निवारण करें, आप ही मेरे परम पिता परमात्मा हो। मुझसे जो गलती हो गई कि मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं किया और इतना बड़ा और ऑपरेशन करवा लिया और ये किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई परेशानी से जो है छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो फिर जैसे ही मैं संकल्प लिया और 24 घंटे के बाद जो है मेरा जो दस्त में जो ब्लड जा रहा था वो परेशानी दूर हो गया, ये मुझे अभी वर्तमान में ही लाभ मिला है।
सर पहले जो आप भक्ति करते थे दामाखेड़ा से नाम दान लेने के बाद उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम उपदेश लिया, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि आपका आध्यात्मिक जो योग बता रहे हैं आप वो खुल गए, आपको पता चला कि भाई किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कबीर परमात्मा ही मोक्षदायक हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उसी भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं, वो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास है, तो आपको मोक्ष का मार्ग मिला। और दूसरा आपको जो लाइलाज बीमारी थी जिसका आप दवाई भी ले चुके थे, आप ऑपरेशन भी करवा चुके थे, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज की मात्र आशीर्वाद से ही आप ठीक हो गए। तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं तो भक्त समाज को ये कहता हूँ कि हम लोग शुरू से कबीर पंथी से दामाखेड़ा से जुड़े थे और वहाँ कबीर साहब की जीवन चरित्र में जो पढ़ते थे कि कबीर साहब जो है उस निज अपने निज स्थान से जो है एक तालाब में कमल के फूल में प्रकट होते हैं और अपने जो जीवन चरित्र को जो जैसे करते हैं कि एक बिना ब्याहे बछिया के दूध को ग्रहण करके जो है अपना परवरिश करते हैं, तो ये जो है कबीर सागर में तो ये चीज उसका कबीर परमेश्वर का तो जीवन चरित्र लिखा है, लेकिन आज तक हमारे पंथ में कबीर पंथ के कोई अन्य धर्म गुरु जो है इस बात को जो है वेदों के द्वारा जो है प्रमाणित करके नहीं बताया, जो वेदों में कई वर्षों पहले जो है रूबरूब लिखा है कि वो परमात्मा जो है तीव्र वेग से बिजली के समान आते हैं और एक कमल के फूल पुष्प में पानी में जो है प्रकट होते हैं और बिना ब्याहे बछिया के द्वारा जो है अपने दूध का ग्रहण करके अपने जीवन परवरिश करते हैं। तो ये तत्व ज्ञान जो वेदों में छिपा है इसको सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा आज तक कोई संत कोई गुरु जो है नहीं बता पाया है। तो मैं भक्त समाज को ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे 21 ब्रह्मांड में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा आज किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज हम जो है अपने ही वेदों को जो है सही ढंग से झांक नहीं रहे हैं, सही ढंग से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी धर्म गुरुओं की जो मनमुखी रूप से लोक वेद जो बताए उसको जो है सुन रहे हैं, जबकि हमारे श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में से 4 में स्पष्ट लिखे कि संसार रूपी वृक्ष में जो है ऊपर की ओर जड़ और नीचे की ओर जो शाखा है इसको जो है जड़ से लेकर शाखा और पूरे पत्ते तक जो सही सही उसके पाठ को बता देगा वही तत्वदर्शी संत है, और ऐसा आज तक हमें कोई संत जो है ऐसा मार्ग ऐसा ज्ञान कोई नहीं बताया। तो मैं सभी भक्त समाज से सादर हाथ जोड़ के विनम्र करके निवेदन करता हूँ कि वो जो है बड़वाला आश्रम आए और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना जो है मोक्ष करे और अपना ये जन्म मरण के जो असाध्य रोग है इससे जो है छुटकारा पाए।
सर पहले आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ बहुत बड़े दुख का कारण है कि इसी समाज में नकली कबीर पंथ भी फैला हुआ है और उनमें सबसे अहम भूमिका दामाखेड़ा वालों ने निभाई है, तो वहीं से आप जुड़े हुए थे। तो सर फिर आपने वहां से हटके परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपको जो लाभ मिला वो आप हमारे दर्शकों को बता ही चुके हैं। तो सर मैं आप जी से यही प्रार्थना करता हूं ये कि जो साधक जो भगत आज भी दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं उन भक्तों को विशेष तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं।
मैं भक्त समाज से जो दामाखेड़ा जुड़ा हुआ है इसको ये बताना चाहता हूं कि दामाखेड़ा वाले ये गारंटी और दावा करते हैं कि जो वंश 42 के द्वारा जो है नाम दीक्षा लेते हैं उसी की मुक्ति होगी, बाकी अन्य किसी अन्य कबीर पंथी से जो है नाम दीक्षा लेते हैं उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अनुराग सागर में जो है पृष्ठ नंबर 138 से लेकर 140 में स्पष्ट रूप से कहा है कबीर परमेश्वर ने कि धर्मदास छठवीं पीढ़ी में तुम्हारा जो वंश है उसमें जो है काल का दूत आएगा और वो जो है टकसारी पंथ से जो है नाम दीक्षा लेके जो है अपनी चौका पद्धति जो है चालू करेंगे और जो चौका पद्धति जो चालू करेंगे और जो लोग उससे चौका बनवाएंगे वो लक 84 में जाएंगे। क्योंकि दामाखेड़ा वाले ये कहते हैं कि जो नाम मंत्र धर्मदास साहेब को कबीर परमेश्वर में दिया है वही मंत्र जो है आज हम अपने भक्त को देते हैं, लेकिन कबीर परमेश्वर जो है धर्मदास साहेब को बार बार बोले हैं कि धर्मदास मोहे लाख दुहाई सार शब्द बाहर न जाए, सार शब्द बाहर पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो इसमें धर्मदास साहेब को इसलिए बताए हैं कि सार शब्द को अगर बाहर आज अगर भेद को खोल देंगे तो काल के दूत जो है बैठे हैं वो जो है इस पंथ को जो है पूरा भक्त समाज को पूरा जीव को जो है भरमा के रख देंगे और उसको काल के मुंह में जो है ले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आज तक जो है दामाखेड़ा वाले जो बात जो बोल रहे थे कि वंश 42 के अलावा जो है किसी अन्य के साथ मुक्ति नहीं हो सकती है, तो मैं यही कहूंगा कि ये बात जो है निरर्थक है। क्योंकि उसमें कबीर सागर में ये भी लिखा है कि प्रत्येक वंश जो है 25 वर्ष और 20 दिन के गद्दी में रहेंगे, लेकिन ऐसे कबीर पंथ दामाखेड़ा में जो है 15वीं पीढ़ी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा उसके जो नियम में जो है कोई भी पंथ जो है वस्तु स्थिति में नहीं चल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अपने सदग्रंथ को देखे, कबीर सागर में जो लिखा बात है उसको एक बार अध्ययन करें, सदगुरु रामपाल जी महाराज की आप सत्संग सुनिए। आप ठीक है दामाखेड़ा से आप दीक्षित है उनके अनुयायी हैं, लेकिन सत्य ज्ञान और तत्व ज्ञान को सुनने में समझने में कोई हर्ज नहीं। आप उस तत्व ज्ञान को हृदय से सुनिए समझिए और उसके बाद आप जो है आप मनन कीजिए विचार कीजिए। क्योंकि कबीर साहब जो है धर्मदास जी साहब को मना किए थे कि सार शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए, आज 15वीं पीढ़ी में फिर वो धर्मदास के वंश जो बता रहे हैं उसमें जो है वो सार शब्द कहाँ से आ गए, तो ये जो है सार शब्द आया नहीं है बल्कि ये मनमुखी रूप से जो है भक्त समाज को भ्रमित कर रहे हैं कि और वहां जो दामाखेड़ा पंथ में जो महंत परंपरा जो चल रहे हैं करिहार परंपरा, तो वहां जो है बाकी अन्य परंपरा में सिर्फ चौका आरती करके अपना जो जीविकोपार्जन की जो पद्धति कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी वास्तविक ज्ञान और वास्तविक नाम नहीं है। मैं भक्त समाज को सादर अनुरोध करता हूं कि जो भक्ति कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी महाराज साहेब को दिया था वही नाम वही मंत्र आज बंदीश और सदगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बड़वाला में आज भक्त समाज को दे रहे हैं, और ये ऐसा मंत्र है जिससे जो है हमें मुक्ति मिल सकता है। तो मैं भक्त समाज से अनुरोध करता हूँ कि वो बड़वाला में आए और अपना मुक्ति करवाए।
जी धन्यवाद आपका।
महाराज जी तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है कृपया प्रमाण सहित बताइए, तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है, वह परमेश्वर कौन है?
गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे, ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर, देखिएगा। यह है अध्याय नंबर 15 का, अब श्लोक नंबर हम 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सरे सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं 15वां अध्याय। इस संसार में नाशवान सर नाशवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म दो कहे हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नाशवान है जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 17वें में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है, और परमात्मा इसी उदाहरण जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ति जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है, इससे ये तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शक्ल है, अंडे आकार है, अंडाकार है ये देखिए, ऐसा है यहां तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं। जब हम हमारे इन चैनलों को कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके, तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है, इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंडाकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, ब्रह्मांड न्यारा क्या क्या बताने इनको, ये देखिएगा। तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, नीचे से शुरू करते हैं। ये पांच, ये सात हैं, तल अतुल वितल महातल अतल सुतल रसातल और पाताल लोक, और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्म लोक है इसके अंदर, ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है, इतना ये एक ब्रह्म लोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महेंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक, यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है, और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने तीन स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पार सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शक्ल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन तीन लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं और ये ब्रह्म है इनका पिता सर्पुरुष। ये केवल 21 ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है इस सर्पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में तीन पुरुष हैं, ये सर्पुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। पांच ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे चार ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो एक लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहां भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपतशिला जहां बैठकर ये 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड, ये सर्पुरुष का क्षेत्र है, सर्पुरुष का। बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो, इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है, ये 7 संख ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है ये। अक्षर पुरुष का केवल इतना ही क्षेत्र है 7 संख ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंख ब्रह्मांड का स्वामी ये असंग, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड है, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, इस पूर्ण परमात्मा का असंग इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग, ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल कुल का मालिक है, ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, ये संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे दातम को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहां से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन, अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक, ये श्लोक नंबर 29 यहां पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा जो मेरे, मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्मा को समझने के लिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब तो आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सर्वब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सर्वपुरुष कहो सर्वब्रह्म कहो, फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, वो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी अभी आपको दिखा था, और वो उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है पूरी गीता जी में। अब देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29, ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है, अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, जरा माने नहीं लिखे ना, उनका क्या होता है जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर दो दुख हैं सबसे भारी, एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं, और फिर मृत्यु। देख कितने अच्छे बेटे हैं बेटियां हैं, कैसे मकान है कोठी है, और कैसा दिन लग रहा है, एक मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहां इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत्, उस ब्रह्मन ब्रह्म को तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म को संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया, आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा, इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में, और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते। श्री कृष्ण जी का था कि इसमें उल्लेख हो ना, गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ तीन गुण बता दिए, रजगुण धर्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब गीता ज्ञानदाता कौन है, ये ब्रह्म है, ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, आठवें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, आठवें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। अब देखिएगा ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साथ मदभावम भावती, मदभावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है, इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और सातवें में क्या कहा है, अब सातवें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को, यहां परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां युद्ध है वहां शांति कैसे, और युद्ध में भी स्मरण जरूरी, तो इसलिए जो हठ योग किए करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं या ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर मेरा श्रमण भी कर, और इसका श्रमण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा श्रमण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदनदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, ये ओम अक्षर है, ये ओम ओम ये एक ओम अक्षर है, और सुमन करके उच्चारण करके सुमन करने का, और यह प्रयाति तदनदेहम जो इसका सिमरण करता हुआ श्री छोड़कर जाता सही आती परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है, ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इस मार्ग का अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है और अपने उससे मिलने वाली परम गति क्या है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में गए हुए फिर जन्म मृत्यु आते हैं, और अपनी स्थिति बताता है 2वें अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के 2वें श्लोक में 4वें अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे, ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है, उस परमात्मा की भक्ति परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का, ओम तत् सत, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक फिर से आइए, ये 17वां अध्याय श्रीमद भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत ऐसे यह तीन प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत उसको पाने का, ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वृषदास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है, ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है दो अक्षर का, और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है, और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर दौड़कर कभी संसार बनी आते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद भगवद गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं, अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन 7वें तक तो कि अर्जुन इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर आठवें में क्या कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहां देखिए, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के देखो पुनात्मा डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईस ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सबसे उत्तम परमेश्वर, परमेश्वर वो सचिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए, हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना नौवे में क्या कहा है, ये आठवां हमने पढ़ दिया नौवां में, आठवें का आठवां पढ़ दिया नौवां। यहां लिखा है कि यहां पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था, जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है। अविद्या से परे अति परे, यानी जो जिसको कोई नहीं जानता, सब उस सचिदानंद परमेश्वर का श्रवण करता हुआ। और दसवां, ये दसवां श्लोक आठवें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस तीन मंत्र के जाप का आक्रमण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता कहता कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। आठवें अध्याय के पांच और सात मंत्र में, आठवें अध्याय के आठ नौ दस में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है और अपने उससे मिलने वाली परम गति क्या है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में गए हुए फिर जन्म मृत्यु आते हैं, और अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में, दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के पांच और नौ श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे, ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा है गीता ज्ञान दाता, अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान को हटाकर काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में, दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है, राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कद्दे फिर।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
सत साहेब भगत जी,
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
शकील दास मेरा नाम है।
सर कहाँ से आए आप?
हम यूपी के हैं, मेरा गिलौला बाजार घर है, सरावस्ती जिला है।
सर क्या काम करते हैं आप?
हम कपड़ा वपड़ा सिलते हैं, सिलाई का मास्टर हैं।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज के भक्ति से पहले हम एक सूफी संत देवा में वारिस पाक थे, उनके यहाँ में जाया करता था। वहाँ तमाम फकीरों और सूफी संत आते थे, वहाँ कव्वाली और तमाम कलाम अल्लाह का होता था। वहाँ एक महात्मा वहाँ आए, वो कहा रोजने गुलामे फैजे कासाना, तो मैं वो भाषा नहीं समझ पाया। फिर उन्होंने कहा है शकील प्यारे मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ। मैं उधर नज़र करके देखा तो मेरा हाथ पैर कुछ नहीं चला, मैं उनके पास पहुँच गया और वो थोड़ी देर हमको ले गए, कहा तुम्हें हम नाम उपदेश देंगे। उतने में एक हमारे गांव का एक आदमी पर्चे वाला देखा तो कहा कि मास्टर तुम यहाँ कैसे आ गए। उतने में वो परमात्मा तुरंत वहाँ गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं दो तीन दिन उनका खोज किया, वो हमको नहीं मिले। उसके बाद में पैसे कौड़ी कुछ नहीं रह गया, वो दूर था, मारक लखनऊ के करीब था, बाराबंकी के पास वो देवाशरी पड़ता है। तो वहाँ हम प्रार्थना किया तो परमात्मा ने हमको दो गाड़ी दिया और दो आदमी थे, दोनों एक एक पर सवार होकर हमको घर पहुँचाया बगैर पैसे का। फिर उसके बाद में हम वहाँ दो चार बार गए, परमात्मा नहीं मिले, हमको पता नहीं था। जब हम यहाँ का सत्संग सुने धर्मदास के बारे में, तब हमका पता चला कि वही परमात्मा है जो दर्शन दिए उसके बाद गायब हो गए, तो हमको होश आया। और उसके बाद में हम बाबा जय गुरुदेव के यहाँ 10 साल भक्ति किया, नाम मंत्र चलाया, वहाँ हमें कोई फायदा नहीं मिला। हमारा घर पूरा सब जल गया, कपड़े की दुकान थी वो भी जल गई, बहुत मुसीबत हमको हुआ। तमाम उनकी भक्ति मेहनत किया, एक बार साधना उनका मैंने किया, मेरी सूरत लग गई तो वहाँ विष्णु भगवान के रूप में पीतंबर कोई महात्मा वहाँ से बोल रहा कि आत्मसुरक्षा आपके अंदर पाई जा रही है और आप कबीर परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब से यहाँ से आगे रास्ता नहीं, आप उनके पास चले आओ। तो एक मधु परमहंस जी का पुस्तक हमें एक आदमी दिया, उसमें लिखा था जो वस्त्र मेरे पास है किसी ब्रह्मांड में नहीं है। मैं सोचा कि शायद परमेश्वर कबीर वही है जो वस्त्र उनके पास है किसी में नहीं।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
मैं वो भक्ति करता था सूफी संत इस्लाम धर्म का।
तो सूफी संत इस्लाम धर्म में आप भक्ति करते थे, तो क्या मंत्र जाप करते थे, कैसे भक्ति का साधना करते थे वहाँ पे?
उनका नाम था वारिस पाक, तो उनका मंत्र था हुवल वारिसुल करीम, ये भक्ति में उनका करता था। कहते थे यही मतलब आप पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते सो जाओगे तो तुमको वो सपने में या बसारत में मिलेंगे। अब कव्वाली वो अपना कलाम करते थे सूफी संतों की, कि मतलब कव्वाली में जैसे फकीर लोग करते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाजे ही जाबाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जल वे जानाना, ये कव्वाली वो कहते थे सूफी संत की। और उसके बाद में वहाँ जाया करता था, वहाँ मतलब तमाम कव्वाली और फकीरों से सत्संग, ये उर्दू कलाम जो होता था ये सब वहाँ बातचीत सुनते थे। कलाम वो थे कि मैं देर से बैठा हूँ, भर दे मेरा पैमाना, ऐसा किए रिंदाना, नशे की नसीहत से कुछ भी नहीं है हासिल, मुश्किल है बहुत मुश्किल दीवानी को समझाना, ये सब कलाम वहाँ वारिस पाक के यहाँ चलता था। उसके बाद में ये जो हमको बाद में कलाम में महात्मा जी जो हमको मिले वो बताया, फारसी उर्दू में बोले हम नहीं समझ पाया, लेकिन जब शकील प्यारे का नाम लेकर कहा तब मैं पलट कर देखा तो महात्मा के पास मेरे अपने आप शरीर बहुत भीड़ थी और अपने आप शरीर उनके पास चली गई और वहाँ वो कहने लगे कि मैं तुझे मंत्र दूंगा। उतने में एक हमारे जान पहचान का आदमी आया और वो कहा कि मास्टर जी यहाँ कैसे तैसे वो महात्मा आदृश हो गए। आदृश होने के बाद उनको बहुत मैं ढूंढा नहीं मिले, फिर दोबारा वहाँ गए और तमाम ढूंढा फिर नहीं मिले, तिबारा हम गए। उसके बाद जब नई मुलाकात हुई तो हम अपने उनसे जिससे मैं मुरीद हुआ था, जमालसा कमालसा वारिस उनका नाम था जो सबको मुरीद करते थे। तो उनसे मैंने कहा कि मतलब हम मांस मछली नहीं खाते हैं, यहाँ का कोई चीज़ खाते पीते हैं, फल फूल खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुमको जबान और दिल नहीं खाना, मांस खा सकते, तो मैं वहाँ से छोड़ दिया।
तो जैसे आप सूफी संत द्वारा बताए मार्ग पर चलते थे, उनके द्वारा बताए गए कलाम पढ़ते थे, कवालियाँ भी गाते थे, तो उस सब से आपको क्या लाभ मिला?
उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला, मुसीबत के सिवा हमें कुछ लाभ मिला ना उसमें हम कुछ देखा। जो अभी मैं बताया सिर्फ उस महात्मा को देखा और हमें कुछ नहीं मिला, उनके मार्ग से हमें कुछ नहीं मिला, परेशानी हमको मिली। उसके बाद में बाबा जय गुरुदेव में कहा कि तुम जैसे मांस मछली नहीं खाओ, तो बाबा जय गुरुदेव आला फकीर हैं, सत्संगियों ने समझाया और उनकी बात, वो 64 कला के अवतार हैं, वहाँ पर जाओगे तो आपका सूरत निरत का जैसे बताया भेद कि आँख कान खुल जाएंगे, आप परमात्मा का प्राप्ति कर सकते हैं। मैं उनके यहाँ नाम उपदेश लिया और 10 साल उनकी भक्ति किया।
तो तुलसीदास जी महाराज मथुरा वाले ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया?
उन्होंने निरंजन ओम रारंग सोहम सप्तनाम का जाप हमको दिया और इस हम कुम्मन लगाकर खूब उनकी भजन किया और एकांत और मतलब खेत पात में आदमी के भीड़ में नहीं, उनका पूरा भजन किया, लेकिन उसमें कोई चीज हमें नहीं दिखाई दिया। 10 साल तक उनकी भक्ति किया, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद मधु परमहंस जी की पुस्तक हमने देखा, जो वस्त्र मेरे पास है किसी ब्रह्मांड में, तो वहां से हमको जोड़ा गया और वहां हम सत्संग प्रवचन करके उनके साथ में 5000 आदमी जोड़ा। जोड़ने के बाद में कि वहां का असूल यह था कि वो उनके जबानों से नालायक बदतमीज सेवा करवाते थे, 10 किलो का बोझा तो 50 किलो को लाद देते थे, इतना सेवा करवाते थे, मिट्टी धुलवाते थे, चेला चिराते थे, एक टाइम भोजन देते थे, वह एक टाइम भूखे आदमी रह जाते थे, अगर गरीब है तो कंटीन से 10 रुपये के चाय देते थे, वो नहीं पैसा तो धक्का मारकर भगा देते थे, और छोटे बच्चे अगर सत्संग के द्वारा वहां बैठ जाते थे रोते थे तो दूसरी औरत से कहते थे इसका झोटा पकड़ के बाहर खींच कर दो, यहां डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरा सत्संग नहीं चल रहा है। वहां ये सब तमाशा देखा, 5 साल तक उनकी भक्ति किया, फिर हमको कहा कि तू मुसलमान है, तू अगर इसमें जुड़ेगा तो हमारे हिंदू धर्म नहीं जुड़ेंगे। तो मुझे बहुत दुख हुआ और कहा कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, जब ज्यादा आदमी जुड़ जाएंगे तब मुसलमान, तो तुम अगर हिंदू बन जाओ तो वो करेंगे, तो हमारे घर वाले वहां से छुड़वा दिए।
जैसे आप बता रहे हैं कि आप 5 साल तक मधु परमहंस जी से जुड़े रहे, तो मधु परमहंस जी ने आपको कौन सा मंत्र जाप करने के लिए दिया?
को मधु परमहंस जी ने मंत्र दिया सतगुरु सतनाम, और आंख बंद करके और कान करके कहा बैठ कर देखो और सतगुरु सतनाम का भजन करो, आप एक धुंधुकार की आवाज आएगी, उसी उड़न खटोला में बैठकर सतलोक अमर लोग चले जाओगे। और हमारे कान में सांस से पता नहीं कौन नाम दिया, हमें नहीं समझा, कहा तुम्हारे अंदर में गुप्त नाम रख दिया और उसके बाद में यहाँ आप गुप्त नाम रख दिया, आप अजर अमर हो गए, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं भक्ति करते के लिए, सुमिरन करना उन्होंने नहीं बताया, पहले आंख कान बंद करके बताया, उसके बाद कहा सुमिरन न करो, तुम्हें मैंने पार कर दिया। मैं
तो जो भक्ति सतगुरु सतनाम की भक्ति आपको मधु परमहंस जी ने दी थी, तो उससे आपको क्या लाभ मिला?
मैं कुछ लाभ नहीं मिला, ना कुछ दिखाई दिया ना सुनाई दिया, ना कोई लाभ मिला सवाए नुकसान के सिवा। और उनके पीछे हमें बहुत मुसीबत पड़ा, खाना पानी ढंग से नहीं मिला, उनका प्रचार प्रसार किया उसमें भूखे प्यासे मेरा कोई मदद नहीं मिला।
परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
अब ये हरिद्वार जी में हमारे एक मित्र श्रीवास्तव जी थे, तो वो हरिद्वार जी के अंदर हमेशा जल चढ़ाने जाते थे, नीलकंठ पर शंकर भगवान का पूजा करते थे, तो वहां से भक्ति सौदागर किताब उनको मिली और वो पढ़े, उनके समझ में नहीं आया, उर्दू शब्द लिखा सूर्य फुरकानी लिखा था, तो कहा ये मास्टर हम कपड़ा सिलते थे, वो कहा कि यहाँ मास्टर आप रख लीजिए इसको, आपके लायक किताब इसमें कुरान शरीफ की बात लिखी, उस किताब पढ़कर मैंने 2 अक्षर का भेद जो लिखा था और उसके बाद में अल्लाह अकबर के बारे में जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह अकबर के लिखा था कि सारे आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, वो चीज मैंने देखकर तत्काल मतलब दौलतपुर आश्रम में हम अकेले और एक बीके सिंह को लेकर आए, एक और आदमी का 3 आदमी लेकर, और ये दिल्ली का कोई भगत था उससे फोन मिलवाया, तो उसने बताया कि हर वक्त गुरु जी आपको नाम देंगे जब भी जाएंगे, तो मैं दौलतपुर वाले रोड वहां आश्रम में गया और वहां नाम मंत्र लिया, नाम मंत्र लेने के बाद में आरती मतलब आरती और उसके बाद में पहला नाम जो मिला उसको मैंने भजन किया, 4 महीना लगातार आए, 5वें महीना में हमको सतनाम मिल गया।
जैसे आप बता रहे थे कि पहले आप सूफी संतों के सानिध्य में रहे, उसके बाद आप बाबा जय गुरुदेव तुलसीदास जी मथुरा वाले से आपने नाम दान लिया, 10 साल तक उनकी भक्ति की, उसके बाद आप मधु परमहंस जी से आपने नाम दान लिया, 5 साल तक उनकी बताई भक्ति की और आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर परमहंस सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला?
उस भक्ति से हमें बहुत कुछ लाभ मिला। पहली बार तो हमारे खेती किसानी में तमाम गल्ला पैदा होने लगा, हमारे बच्चे सुखी रहने लगे, तमाम धंधा पानी चल गया और खूब खुशहाल मेरे बच्चे हैं और कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है, बहुत कुछ मिला। एक बार हम अपने खेत में धान काटने गए थे तो हमें सांप ने डस लिया और वहां हम अकेले थे, एक औरत को भेजा गया कि जाओ बुला लो, इनके ऊपर जहर चढ़ गया, हमारे अंधेरा छा गया, विष हुआ। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज के शकल में महात्मा एक आए, हम एक पुड़िया में इतना बड़ा दिया का तू बेटा खा ले, तू जितना मन होता धान का तेरी जहर खत्म हो जाएगी, हमारा भी निशान है जहां काटा था, परमात्मा ने हमको वहां बचा लिया सर्प से काटने के लिए, मतलब वो जहर हमारा खत्म हो गया। हम सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में पूर्ण परमात्मा ही सामान देखा और कई बार हमारे तमाम दुर्घटना हमारे सामने है तो हर जगह हमें परमात्मा ने बचाया, यहां हमें लाभ मिली। जैसे लोगों ने इस्लाम धर्म ने कहा कि वहां चले गए तो उन्होंने मांस को पीस करके और ये दाल के अंदर मिलाया और कहा कि इसको भरिष्ट कर दो, ये दूसरे कौम में चला गया इस्लाम धर्म छोड़ के, मुल्ला मौलवियों और जो मियां लोग थे सब लोग इकट्ठा हुए, रिश्तेदार नातेदार हमारे, तो पीस कर जब हमारे अंदर डालना चाहे तो सदगुरु ने इस सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी जबान उलट कर यहां चली आई और हमारे हाथ में जो हड्डी और कंकाल दिखाई देने लगा, लोग तमाम पानी नहाए, होश नहीं आया, डर कर माने छोड़कर भाग गए और उसके बाद में कुछ घंटा के बाद 2 बजे रात में हमारी शरीर फिर वैसे हो गई, मुझे होश आ गए, परमात्मा का चमत्कार हमने देखा और स्वयं परमात्मा हमें दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं दिखाई देता। मैं हर वक्त अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरण में ही ध्यान रखता हूँ, मुझे बहुत कुछ मिल गया। हाँ, जो परमात्मा को मैं ढूंढता फिरता था वो परमात्मा सतलोक आश्रम बरवाला में हमें पूर्ण परमात्मा मिले और हम परमात्मा से लाभ और बहुत फायदा उठाए और परमात्मा हमें बरवाला में मिले और उनका दर्शन किया। पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही, कबीर पूर्ण परमेश्वर वही है, उनका कभी कबीर का रूप हो जाता है, कभी सदगुरु रामपाल जी तो एक ही है। उनकी भक्ति में हम तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भक्त कोई भी जात यहाँ आकर और परमात्मा के शरण में आ जाए, उनका नाम भी और भगवान प्राप्त होंगे, परमात्मा प्राप्त होंगे।
भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जैसे आप पहले सूफी संतों के पास भी गए, फिर आप जय गुरुदेव से भी जुड़े, 10 साल तक वहाँ भी रहे, मधु परमहंस जी से भी आपने नाम दीक्षा ली, 5 साल तक उनकी बताई भक्ति की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो भक्त समाज को जो आज जय गुरुदेव से जुड़े हुए हैं या मधु परमहंस से जुड़े हैं या सूफी संतों के पास जाते हैं, विशेष तौर पर उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी भक्त समाज हैं सब नकली हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं पूर्ण है, लेकिन हमारे परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं वेद शास्त्र से, कुरान में, बाइबल में प्रमाण देकर जो बात कर रहे हैं वो सत्य भक्ति है और सतलोक में सतभक्ति की जाएगी तब सतलोक प्राप्त होगा। मैं सभी भाइयों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए और उनसे कल्याण करवाएं और कोई भी मुसीबत कोई भी चीज आती है तो पूर्ण परमात्मा उसकी मदद करके टाल देते हैं। हम भक्तों से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ यहाँ मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए कि पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज है, इनके सिवा और कोई पूर्व परमात्मा है नहीं, इनके शरण में आने से कोई भी धर्म यहाँ आ सकता है, सबका कल्याण हो सकता है, इसलिए हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण ही में सब कुछ मिलने वाला है और कहीं नहीं, कहीं भी जाएंगे तो काल ही काल है, लेकिन यहाँ पूर्व परमात्मा सतलोक आश्रम में जो है वो पूर्व परमात्मा है। मैं पूर्व परमात्मा मानता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि पूर्व परमात्मा के शरण में आप लोग आए और आराम से पूर्ण भक्ति आपको मिलेगी, परमात्मा भी प्राप्त होगा और परमात्मा सतलोक आश्रम में विराजमान है, परमात्मा की खोजने की जरूरत नहीं, उनके शरण में आए और सबको पहचान हो जाएगा कि परमात्मा है, मंत्र करें जाप करें सब कुछ उनको मिलेगा।
जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
महाराज जी, गीता अध्याय 3 के श्लोक 6 7:8 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो साधक समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर साधना करता है वह मूर्ख तथा मिथ्याचारी पाखंडी दंभी कहा जाता है। इसलिए अर्जुन तू शास्त्र अनुकूल कर्तव्य कर्म कर, हठ योग करके कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म ना करेगा और एक स्थान पर बैठकर साधना करता रहेगा अर्थात कर्म सन्यासी बनेगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक में कहा है कि एकांत स्थान पर स्थिर होकर मन इंद्रियों को रोक कर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे और जिस आसन पर बैठे वह आसन शुद्ध भूमि पर लगावे, ना वो अधिक नीचा हो और ना अधिक ऊंचा हो। उस पर बैठकर योग का अभ्यास करें, अपनी दृष्टि नाक के अगले भाग पर लगावें। इस प्रकार साधना करने से साधक मुझ में रहने वाली शक्ति को प्राप्त होगा। इन दोनों वक्तव्यों से विरोधाभास स्पष्ट नजर आ रहा है तथा एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत या अन्य व्रत भी क्या मोक्ष के साधन है? यदि हाँ या ना तो प्रमाण सहित स्पष्ट करें।
गीता जी में दो प्रकार का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहां इसने ये नहीं कहा मेरा मत है वो वेद ज्ञान है। तो इसने छठे अध्याय में लिखा है कि एक स्थान पर बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर ऐसा आसन लगाओ जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और बढ़िया मृगशाला या कोई अच्छा वस्त्र बिछाओ और नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ। ये है इसका अपना मत। और फिर अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन अगर तू एक स्थान पर बैठा रहा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। तो अगर हम इसको मानेंगे तो चौथे अध्याय वाला कैंसिल हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हमने जहां पर इसने ये अज्ञान हमें दिया है वो इसका मत है वो अलग है, जो वेद ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। तो मंत्र कहीं पर भी इसने और नहीं लिखा, केवल एक ओम मंत्र ही बोला है। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद् गीता इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद् गीता का और श्लोक नंबर 8 है। यहां से ये शुरू है, यहां इसका अनुवाद है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म न करना यानी एकांत स्थान पर बैठकर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया। अपनात्मो अभी आपने जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद् गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। अब छठे अध्याय के 11वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपना मत प्रोड्यूस कर रहा है। यहां ये कहता है कि एकांत स्थान खोज कर और उसके ऊपर वो घना ऊंचा भी ना हो, एक आसन लगाओ, मृगशाल बिछाओ और नाक के आगे देखते रहो, बस ये साधना बता रहा। ये इसका अपना मत है, ये हमने नहीं मानना, क्योंकि जो वेद ज्ञान है वो सत्य है और वेद ज्ञान जो है गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है। कबीर परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था इसके कंप्यूटर में और फिर वहां से निर्धारित समय भर दिया था, उसके बाद अपने आप जैसे 9 महीने के बाद बच्चा अपने आप बाहर आता है, कोई वश नहीं चलता किसी का, ऐसे ही पांचों वेद बाहर आ गए इसके सांसों के द्वारा बाहर आ गए। उसके बाद इसने पढ़ा, इसने देखा कि इसमें तो तेरी सारी पोल खुल जाएगी, सूक्ष्म वेद भी उसके अंदर था उसको नष्ट कर दिया। ये 4 वेद रख लिए जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी तो है लेकिन वे ऑफ वर्शिप पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है वो रख लिए, तो वो ज्ञान तो सही है। उसके अतिरिक्त फिर उससे भी हटकर इसने अपना मत कुछ प्रिडोस किया है इसमें, तो वो नहीं मानना हमने, क्योंकि वेद ज्ञान गॉड गिवन है और गॉड गिवन ज्ञान है वो परमात्मा का आदेश है। उस आदेश से हटकर हम किसी अधिकारी का आदेश पालन करके और कानून भंग करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे, हमने ये भी ध्यान रखना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 और ये है 11 श्लोक में 11वां श्लोक। शुद्ध भूमि पर जिसके कर्म से कुसा यानी डाब कोई घास मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, यानी पहले डाब हो फिर मृगशाला हो फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछे हो, और न ऊंचा और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। 13वें में देखो, काया सिर और गले को समान एवं अचल यानी सीधा रखकर धारण करके और स्थिर होकर अपनी उसी, यहां से ये 10वें से शुरू होता है, इसकी सारी क्रिया यहां से 10वें से शुरू होती है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाले आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, परमात्मा में अपने में नहीं। आगे फिर देखो, अब 11वां हमने पढ़ लिया कि शुद्ध भूमि पर एकांत स्थान तो ऊपर पढ़ लिया, कर्म से ये पहले डाब बिछी हो फिर मृगशाला हो फिर वस्त्र बिछे हो ऐसा आसन लावे, ना घना ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, इस प्रकार अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर 12वें में कहा है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अब 13वें में छठे अध्याय का 13वां पढ़ रहे हैं, काया सिर और गले को सम्मान एवं अचल करके धारण करके और स्थिर होकर अपनी यानी एक स्थान पर डट कर बैठे, अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब ये हम देख रहे हैं 14वां, ब्रह्मचारी के वर्तमान स्थित भय रहित भली भांति अंतःकरण वाला सावधान होकर योगी मन को रोक के मुझ में चित वाला मेरे में प्राण होकर स्थित होए। अब यहां फिर इसका मतलब रहा ये, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में प्रवेश करके मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली यानी मेरे तक ही सीमित ब्रह्मलोक में जाने वाली परमानंद की परिकाष्ठा रूप शांतिम को अधिगत शांति प्राप्त होता है। अब निर्वाण परमाम यानी मृत्यु के बाद, निर्वाण माने गमन भी होता है यानी मृत्यु भी होती है, और निर्वाण माने मोक्ष भी होता है। निर्वाण परमामम यानी श्रेष्ठ मेरे सतर का जो मुझ में रहने वाला जो श्रेष्ठ प्रमाण है उस शांति को प्राप्त होगा, ब्रह्म लोक में जाएगा ब्रह्म का साधक और वहां जिस शांति है वो तत्न प्राप्त हो जाएगी। अंडरस्टूड है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, बहुत खाना तो यू है पेट दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे भक्ति हो कोन्या, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना, व्रत रखना भी गीता में मना है और ये व्रत रखवाओ एकादशी का ये कहां से लाए, और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिस शांति मिला वो पता ही है, ब्रह्म लोक में गए वहां से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्रत है और ये एकादशी का व्रत तो बहुत मैं तो पूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। ये तो सही है। और यहां इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति वातन पता जैसी मिलेगी, ब्रह्म लोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना जो सूक्ष्म वेद में लिखा है, और उसके वही जो का तू गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुतम गति में स्थित है, इसी में रह गई है, पार नहीं हुए। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा जी को, काल ने क्या बोला, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, कि एक तपो तपो कर आवाज कर दी इसने काल ने, और जब तप कर दिया, जब कहा लोक रचो बल मेरी माया, कहती है सब मेरा जाल है, अब लोक रचो, अब सृष्टि रचो, तुम जाओ, वो चार्ज होगी बैटरी, अब अपनी बर्बाद करो। तो यहां इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, तो ये भी उन्होंने परमक सर्वब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तू समर कल्वे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमन करो, विशेष कसक के साथ सिमन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर कर लो, चलते कर लो, बैठते हो। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया, कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की, उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो व्यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है, उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। तीसरे अध्याय के आठवें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। और यहां इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति वतन पता जैसी मिलेगी, ब्रह्म लोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है, हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना। सोलहवें मत ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्रत है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार जो सूक्ष्म वेद में लिखा है, और उसके वही जो का तू गीता में मिलता है, वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
नमस्कार।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
नंद किशोर दास।
जब सर कहाँ से आए आप?
हम आए हैं बिहार से, रोहतास डिस्ट्रिक्ट विशंभरपुर गांव पड़ता है।
सर क्या काम करते हैं आप?
हम रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे बिहार गवर्नमेंट में, और मैंने 2004 में रिटायर कर गया।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
पहले तो मैं प्रारंभिक में 10 महाविद्याएं जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उसमें हम लगे थे, बहुत लोग गुरु मिले करते भी रहे, लेकिन कुछ प्रगति हमको उसमें नहीं मिली। तो लाचार होकर रिटायरमेंट के बाद हम रामाश्रय सत्संग मथुरा से अटैच हुए, और वही सत्संग में थे ही रिटायरमेंट के बाद तब तक, मैंने अक्टूबर मैंने 2013 तक, अक्टूबर 2013 तक मैं था। अक्टूबर 13 में जो मैंने हमको बीमारी पकड़ ली, जोर्स की बीमारी, अनक्यूरेबल डिजीज को कहते हैं। हम पहले इलाज कराए, देखा, पहले पीएमसीएच पटना गए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना गए, लोगों ने कहा कि आपको सीकेडी है, इसका मतलब क्या होता है भाई? तो क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी तीन तरह का डिजीज होता है, क्लासिफाई लोन किया और कहा कि यह इनक्यूरेबल है, कंप्लीटली इनक्यूरेबल है, इस धरती पर अमेरिका में भी इसका इलाज नहीं है, तो हम करेंगे इसको, इसका स्पीड स्लो करेंगे। निराश हो गए हम, यहां से चले गए भेलोर, मद्रास, चेन्नई, वहां जाकर हम रहे, उन लोगों ने भी यही कंक्लूड किया कि नहीं साहब, इसका इलाज संभव नहीं है, क्यूरेबल नहीं है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, उज्जैन दिन करें। इसके बाद बीएचयू बनारस है, इन लोगों ने भी कहा कि यही बात जो उन्होंने कहा था। हम रामदेव बाबा के आश्रम में गए, 2 महीना दवाई कराए, कोई फायदा नहीं हुआ, स्थिति बिगड़ती गई, अंत में दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में चले आए, यही दवाई चल रही थी और 2 साल चली, स्थिति मेरी बहुत नाजुक हो गई। अक्टूबर में इस तरह की नाजुक हो गई कि अब डिक्लेयर हो गया कि हम मर जाएंगे। हमारे सगे संबंधी हित्र मित्र सब मिलने के लिए आए, और सच पूछा जाए तो कफन भी खरीदा चुका था।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
यही बड़ी सौभाग्य की बात है, मेरे जीवन की सार्थकता इसी में है। मैं जीवन असफल रहा, भले ही पढ़ा लिखा नौकरी किया, लेकिन जीवन की सार्थकता नहीं थी, बस जो हुआ चंद दिनों में, चंद महीनों में हुआ है। मैं बेड पर पड़ा हुआ था, रोग सज्जा नहीं, मृत्यु सज्जा पर। एक ज्ञान गंगा नाम की किताब एक बगल में एक साधारण व्यक्ति, कमन व्यक्ति ने आकर मुझे दिया, कहा इसको देखिएगा। मुझे पढ़ने की क्षमता नहीं थी, पेपर भी नहीं पढ़ पाता था। कहा क्यों, आप क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़कर होगा? कहा कि एक संत की किताब है, प्रणाम तो कर लीजिए। तो किताब बेड पर रख लिया, उसको मैंने बेड बुक बनाया और तीन चार दिन में थोड़ा थोड़ा दिया, देखा। उतनी बात तो नहीं समझ में आई क्योंकि ब्रेन बहुत कमजोर हो चुका था। फिर भी न मालूम क्यों ईश्वरीय कृपा, भीतर से एक बड़ा इंस्पिरेशन जगा, लगा कि स्वयं गुरु भगवान हमको बुला रहे हैं। हमको हुआ कि हमको सतलोक आश्रम जाना है। हमारे परिवार वालों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि क्या ऑर्थोडॉक्स है साहब, एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का विश्वास में जाओगे, अब तो तुम्हारी अंतिम कहां जाओगे सतलोक। हमको हुआ कि हम जाएंगे, हाँ जरूर जाएंगे। दूसरे आदमी की सहायता से मैं चलने में असमर्थ था, किसी तरह टांग टूंग करके यहां लाया गया। आए यहां तो पहले हुआ कि नाम सब लेता था, हमने भी नाम फॉर्म भरा और हमने नाम लिया, दीक्षा लिया।
परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
अरे अपूर्व लाभ मिला, अपूर्व, मैंने आई कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। भावना मेरी है, दिल की बात, दिल के पास भाषा नहीं है, मुंह के पास भाषा है। हम बोल सकते हैं, फील जो करते हैं उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमको क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला, हमारी जिंदगी मिल गई। हंस करके हमने तो कुछ नहीं कहा था, उन्होंने माथा पर हाथ रखा, हंस दिया, कहा कि जाओ। और मैं तो आया था कि अंतिम आशीर्वाद ले लें भगवान का, और मैं जाते जाए गया और न मालूम जिसको स्वर्ण ने कहा था, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान प्रमाण देकर कहता है कि की डिजीज की दवा नहीं है दुनिया में, और वो कहां गया हम नहीं कह सकते। ये वंडरफुल, ये कौन शक्ति है? ये परमात्मा की शक्ति हो सकती है। तो ये परमात्मा साक्षात भगवान है, और इन्होंने जो किया उसको हम शब्द में क्या वर्णन करें। मारा हमको तो खड़ा है, खड़ा हो सकते थे मात्र चार महीना में। 19 अक्टूबर को मैंने प्रथम दीक्षा लिया है, 18 अक्टूबर को अपना हाजिरी देने के लिए आए थे। पहले भी आते, आने की स्थिति में नहीं थे, धीरे धीरे रिजेन किया एनर्जी, एनर्जी किया, तब हम आए हैं आज। आज सेकेंड नाम लिया, हाजिरी दी अपनी और फिर दर्शन किए। बड़ी खुशी की बात है कि महाराज जी प्रसन्न हो गए मुझे देख करके, उन्होंने आशीर्वाद दिल खोल के दिया। अब मुझे जिंदगी की सफलता हो गई, मुझे नहीं कुछ नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट एक्स, बस हो गई, मेरा सब कुछ मिल गया। यहां दर्शन कर लिया, भगवान ने हंसकर आशीर्वाद दिया है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ बाकी नहीं है।
जैसे आप बता रहे थे कि आपकी किडनी फेल हो चुकी थी और आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए और बड़े बड़े डॉक्टरों से आपने अपॉइंटमेंट लिया, वो डॉक्टर ने बताया कि भाई ये अनक्योरेबल डिजीज आपको है, इसका इलाज अमेरिका में भी नहीं है जो कि दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। फिर आप निराश होकर मृत्युशैया पे, आप बता रहे हैं कि आप मृत्युशैया पे लेटे हुए थे, फिर आपको परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, आपने उसके पढ़ा और सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आप यहां सतलोक आश्रम में आए और मात्र आशीर्वाद से जो आपकी अनक्योरेबल डिजीज थी वो आपको पता ही नहीं कहां छू मंतर हो गई, और आज मैं देख रहा हूं कि आप स्वस्थ अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और आप बता रहे हैं कि आप आए थे तो किसी का सहारा लेके आए थे, किसी के कंधों पे बैठ के आए थे। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
हम तो क्या कहें भाई, कहेंगे तो लोग विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, ये तो अद्भुत बात है। हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से 74 इयर्स मेरी उम्र हुई और सब 74 इयर्स बेकार चला गया, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं साधारणता, जिंदगी बेकार गई, और अफसोस होता है कि पहले हमको मेरे भाग्य में नहीं था। मैं कहूंगा भक्त समाज से कि बंधु मेरी बात मत मानिए, आप यहां जरूर आइए, सतलोक आश्रम मस्ट विजिट। एक बार आप आए, गुरु महाराज का दर्शन करें, इस माहौल में एक दो दिन बिताएं और जो पुस्तक है उसका अवलोकन करें, और स्वतः आपको मार्ग मिल जाएगा, स्वतः मार्ग मिलेगा। आ इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग है नहीं, जीवन की सफलता के लिए इससे अच्छी राह है ही नहीं, मेरी समझ में। और जिससे मैं कहता हूं, चूंकि इंटेलेक्चुअल क्लास से संबंधित हूं, अच्छे अच्छे जो विद्वान लोग कहे जाते हैं उनसे संपर्क है, सब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप लोग क्या कहते थे, क्या हो गया? उन लोग भी समझ नहीं पाते कि हुआ क्या इनको, ये कैसे हो गया। तो हम यही कहते हैं हाथ जोड़ करके, भाई हम तर्क नहीं देते, आप चलिए मेरे साथ, आप जुटिए। तो कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, और कुछ लोग कुछ प्रश्न हमसे करते हैं, उसका हम जवाब सही देने की कोशिश करता हूं। चाहता हूं कि इंटेलेक्चुअल क्लास पहले जुड़े, सब जुड़े, अच्छी बात है। इंटेलेक्चुअल क्लास को मैं जोड़ना चाहता हूं, इसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा, जितना संभव होगा करूंगा। खाली मालिक की आशीर्वाद चाहिए, मालिक का आशीर्वाद देते रहें, और जब तक जय दिन बचा हुआ है, रेस्ट डे जितना है मेरे लाइफ का, फेग एंड ऑफ माई लाइफ है, इसमें जो भी पीरियड है मेरे पास, मेरे डिस्पोजल पर दिन, वो गुरु की सेवा में कटे तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा।
सर, यू आर ए रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड यू बिलोंग टू इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, एनीथिंग यू वॉन्ट टू से अबाउट संत रामपाल जी महाराज एंड हिज ट्रू वर्शिप?
व्हाट आई कैन से सर, एक्चुअली आई हैव नो नॉलेज, आई हैव नो नॉलेज, हाउ कैन आई गज द हाई, कैन आई गज द डेप्थ ऑफ ए सी, समुद्र की गहराई को मापने की शक्ति हम में नहीं है। सच्ची बात यह कहते हैं, ये भगवान है, ये व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के रूप में साक्षात भगवान है। तो भगवान के विषय में मैं एक साल दास क्या कहूं, मैं तो कहूंगा कि सभी लोग उनकी याचना करें, उनके आशीर्वाद के लिए याचना करें। हाँ, कृपा के सागर हैं, दया के सागर है जरूर, नहीं कहिएगा तो वो भलाई करेंगे। हमने कुछ नहीं कहा था, हमको जीवन दान दे दिया उन्होंने, मैंने उनको कुछ नहीं किया। हम तो ये नहीं समझ पाए कि हमने कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया कि हमको ये वरदान दिया उन्होंने, ऐसे अवस्था में हमको जीवन दान दे दिया, इसका क्या कहे। इसे ऐसा उदाहरण तो मिलेगा नहीं महाराज। अंत में मैं भक्त समाज, बुद्धिजीवी समाज या अन्य जितने भी वैज्ञानिक हैं, सब समुदाय से मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम, सतलोक आश्रम हिसार, डिस्ट्रिक्ट हिसार में आए, सतलोक आश्रम जरूर आवे, और सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझें, उनसे दीक्षा लें, अपने जीवन को कल्याण करें। और पर्टिकुलरली विशेष रूप से मैं बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टरों, माननीय महान लर्नेड डॉक्टर्स, जैसे हमने जा कहा सीएमसी भेलोर, पीएमसीएच पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना, और यहां अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, बीएचयू बनारस के सारे सीनियर डॉक्टरों ने मुझे डिसहर्टेड किया, नर्वस कर दिया, और लगा कि मेरे समक्ष मैं और साफ मेरे मृत्यु के साथ बीच में कोई नहीं। मैं उन महानुभाव डॉक्टरों से, विद्वान डॉक्टरों से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि इतना जल्द निर्णय न करें। भारत ऋषियों का देश है, महर्षियों का देश रहा है, और यहां पर रामपाल जी ऐसा महाराज, ऋषि, युग पुरुष, भगवान, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, और ये कह देना कि यह आज की विज्ञान या इस रोग को ठीक नहीं कर सकता है, और मृत्यु के अलावा कोई उपाय नहीं है, और आज मैं स्वस्थ खड़ा हूं। उन डॉक्टर बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि पेशेंट को इस तरह से हतोत्साहित न करें, कृपया उसे जरूर समझावें कि एक मौका दें और कहें कि सतलोक आश्रम वह अवश्य आए, और जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। मुझे विश्वास है बहुत बड़ा कल्याण होगा। विशेष रूप से मैं अपोलो हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर डीके अग्रवाल जी का अनुरोध करता हूं, जिन्होंने मुझसे कहा था कि अमेरिका भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और आज मैं इंडिया में हूं, सतलोक आश्रम में हूं, और गुरु का केवल आशीर्वाद प्राप्त करके मैं ठीक हो गया। वे इतने बड़े डॉक्टर, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम ऐसी हल्की बात किसी पेशेंट को न कहें, अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसा न समझें कि अर्थ काम, दुए कार्य के लिए सतलोक आना है, ऐसी नहीं, मोक्ष भी है, इसीलिए मैं सब भक्तों से, सब वर्ग, सब बौद्धिक हो, जितने वर्ग हैं हमारे समाज में, वैज्ञानिक हो, सबसे मेरा अनुरोध है कि आवे जरूर सतलोक आश्रम में और नाम दीक्षा ले, और नाम दीक्षा लेकर के तीनों काम, अर्थ और मोक्ष तीनों की प्राप्ति करें, यहां सुनिश्चित प्राप्त होता है।
धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।